नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है बिफरकेशन ऑफ सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम विभाजन। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं ये कार्यक्रम बिफरकेशन ऑफ सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम विभाजन।
नमस्कार लर्नर्स, आई वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। तो आज जो हम बात करेंगे, हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप सुनना ध्यान से, जो आपको सिलेबस है ये किस बेस पे बना हुआ। अगर हमने लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को 12th क्लास के लिए लाया है तो हमने इसे क्या दिमाग में रख के लाया हुआ है, ये कहाँ कहाँ आपकी मदद कर सकता है, और अल्टीमेटली हमने TMA के लिए इसे कैसे अलग किया है, और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, टर्म एंड एग्जाम होगा, उसमें से कैसे हमने इसे डिवीजन किया है, ताकि आप पे बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े एग्जाम का, आपका जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम होगा, हम अपना जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है वो भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगी, उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि किस किस तरह से हमने आपको क्वेश्चन पेपर को इजी तरीके से बनाया है, ताकि आपको करने में आसानी हो जाए और आपको मौका मिलेगा चॉइस का। यहाँ पर जैसे कि पहले हम 35 क्वेश्चन देते थे टोटल, पर आपको 35 में से 35 ही करने होते थे। अभी हम जो करेंगे उसमें हम इन बिटवीन बीच में से चॉइस भी दे रहे हैं सब क्वेश्चन के बीच में, और वो क्वेश्चन के बीच में आप देखोगे अपनी वेबसाइट पे जाकर के, आपका लाइब्रेरी साइंस का भी अपलोड हुआ है, कैसे डिवीजन हुआ है, कैसा सैंपल पेपर बना हुआ है, वो आप वहां पर देख लेना। तो बेसिकली हमारा जो एम है लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन को 12th में लाने के लिए, इसमें इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अगर आगे जाकर के लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन लेना चाहते हो कितना आपके लिए लाभदायी है, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तब भी इसके लिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में आप डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं, या आप कुछ किस तरह से लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है। मेन जो एम है इसको, ऑब्जेक्टिव जो माइंड में रखा गया है वो है आपको ट्रेन करना कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, उसकी हम सर्चिंग कैसे करते हैं और उसका रिट्रीवल कैसे करते हैं, उसे हम लेते कैसे, इन्फॉर्मेशन को हम रिट्रीव कैसे करते हैं, ढूंढते कैसे हैं, या हम अपने जो लर्नर्स हैं उनकी हम स्किल कैसे बढ़ाते हैं, ताकि वो आगे जाके अपनी एजुकेशन को सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, एकेडमिक करियर को बढ़ा सकते हैं और करियर में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ये कोर्स बना ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि आपको यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं जॉब्स के लिए, आपका प्रोफेशनली ग्रोथ कैसे होगा, वो सब चीज़ें हमने इस कोर्स में डाली हुई हैं। इस कोर्स को जो डिवाइड किया गया है वो 6 मॉड्यूल्स में किया है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात तो मालूम होगी कि ये 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। 6 मॉड्यूल्स में से हम कहेंगे आपको मॉड्यूल 1 जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसे हिंदी में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र कहेंगे, फिर दूसरा ग्रंथालय और सूचना केंद्र के प्रकार हैं, फिर आधुनिक ग्रंथालय संचालित डिजिटल और वर्चुअल, फिर ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र, जो इस सब हिंदी में मैंने आपको ये बताया, इन लेसन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे जो मॉड्यूल 1 में कौन कौन से लेसन्स आते हैं। ओवरऑल हमने इसको 6 मॉड्यूल्स में जहाँ डिवाइड किया है, वहाँ जो हमारे 4 मॉड्यूल हैं, पहले 4 मॉड्यूल जो है ये हमारे कोर मॉड्यूल हैं, ये सभी को पढ़ने हैं। फिर हमारे पास ऑप्शनल है 5A और 5B, 5A 5B में से कोई बच्चा A पढ़ना चाहे वो A पढ़ सकता है, जो अगर लर्नर B पढ़ना चाहे तो B पढ़ सकता है। ओवरऑल मगर अगर आप देखोगे, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे आप पढ़ना चाहेंगे तो दोनों ही मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। मॉड्यूल 1 जो है उसमें पहला जो चैप्टर है वो है हमारा, जो मैंने बताया आपको, ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र अवधारणा और समाज में भूमिका कि क्या सोसाइटी में क्या इनका रोल क्या है, हमारी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सेंटर्स का, लाइब्रेरी कैसे अलग होती है इन्फॉर्मेशन सेंटर से, ये हम हमारा पहला ही चैप्टर है फर्स्ट मॉड्यूल का। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, कि कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, पब्लिक है, एकेडमिक है, स्पेशल है, नेशनल है, ये हमने सेकेंड चैप्टर लिया। थर्ड में हम आपको बता रहे मॉडर्न लाइब्रेरीज के बारे में बता रहे, मॉडर्न लाइब्रेरीज में क्या क्या आता है, ऑटोमेटेड, डिजिटल, वर्चुअल, इन सब लाइब्रेरीज के बारे में बताएंगे। चौथा चैप्टर जो है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो ग्रंथालय के विज्ञान के आप समझ ले नींव जो है लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट की, वो रंगनाथन के फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो इस तरह से हमारा मॉड्यूल वन खत्म हो जाता है। फिर हम आते हैं मॉड्यूल टू पे, वो है इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जिसे हम कहते हैं सूचना स्रोत। इसको भी किस तरह से बनाया गया, इसको ये बताने के लिए बनाया गया है इस मॉड्यूल को, कि हमारे लर्नर्स को ये पता चले कि एजुकेशन किस किस के थ्रू, आप कौन से सिस्टम्स हैं, चाहे किताबें हैं, फिल्म्स हैं, ऑडियो वीडियोस हैं, चाहे जितनी तरह की भी वैरायटी के भी सोर्सेस हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कितनी तरह के सोर्सेस से हम पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं। इसको फर्दर जो डिवाइड किया गया है ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, हम सूचना स्रोतों को किस तरह से ओवरव्यू करते हैं, किस तरह से उन्हें हम देखते हैं, टोटली कितने इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। फिर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कितनी तरह के स्रोतों के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के जो हैं। तीसरा है रेफरेंस सोर्सेज, जो है संदर्भ स्रोत, जिसमें डिक्शनरीज, रेफरेंस बुक्स सारी आ जाती हैं, एयर बुक्स, सभी कुछ, जो डायरेक्टरीज, ये सब उसमें आती हैं। फिर ई रिसोर्सेज की बात भी की है हमने, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, इसमें क्या किस किस तरह की जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, किस किस तरह के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हमने सोर्सेज के बारे में बताया, तो अगला जो हमारा मॉड्यूल है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हम इन सोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हमारे पास सोर्सेज हैं तो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, इसलिए हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हमारे अपने लर्नर्स को, ये बताते हैं कि किस तरह से हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, या हम कौन से टूल्स यूज करते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाते। इसमें पहला जो यूनिट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, जहां हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, पर्पस की, किस क्यों हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा एम क्या है इसके पीछे, क्यों करना है हमें। दूसरे में हम आपको बताएंगे प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, कि लाइब्रेरी मटेरियल को जो ही आपने जहां से ऑर्डर किया, जहां से आपके पास रिक्वेस्ट आई, वहां से लाने के बाद इसके पास, मतलब बिहाइंड द डोर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको यूजर को नहीं पता चलती है, वो प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग भी एक प्रोसेस है। तो हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं इन सब चीजों को, फिर हम इन्हें अरेंज कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को करने का मतलब ही है थर्ड स्टेज जो आती है, जो तीसरा चैप्टर इस यूनिट का आएगा, वो है हम इसे अरेंज कैसे करते हैं। आप अगर ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो आपका पूरा सिलेबस है वो इंटर्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको इसका मतलब समझते जाएंगे। फोर्थ है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्योंकि हमेशा ही आप देखेंगे लाइब्रेरी जो है एक सेवाओं का ही केंद्र माना जाता है, तो हम हमेशा ही यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइब्रेरी है, नहीं तो लाइब्रेरी को बना के छोड़ दीजिए तो कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इनका यूज़ हम प्रमोट कैसे करें, ताकि लोग ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा यूज़ करें, ताकि लोगों में ज़्यादा नॉलेज आए, जागरूकता आए, इसीलिए पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। उनके टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि अगर ऑफिस में कोई काम करता है तो उसके बाद पढ़ना चाहे, सुबह जल्दी जाना चाहे, लेना चाहे, उसके मेंबर बनना चाहे, तो ये सब चीज़ें हमारी को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। इसमें जो हमारा पहला यूनिट, हम इस फोर्थ मॉड्यूल में पहला यूनिट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर यूजर्स, हमारे यूजर्स के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हम देते हैं, जो बेसिक सर्विस, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरी हो, फिर चाहे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो, एक बेसिक सर्विस तो आपको देना ही पड़ेगा, वो हर लाइब्रेरी का के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद जो दूसरा यूनिट है इसमें, वो है ट्रेडिशनल सर्विसेज, आप ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज में क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिव एंड एंटिसिपेटरी, आप जो रिस्पॉन्सिव, मतलब जो आपने मुझसे मांगा उसका रिस्पॉन्स में मैं क्या दे रही हूँ, एंटिसिपेटरी, जो मैंने पहले से सोच लिया कि मेरे यूजर्स को क्या क्या चाहिए हो सकता है. अब आजकल हमारा बायफर्केशन चल रहा है सपोज, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे जो यूजर्स हैं, मेरे जो यहाँ पर रीडर्स हैं, उनके लिए मुझे किस किस तरह की डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए, हर तरह का सिलेबस रखना चाहिए. हमें ये देखना है एट पार हम बाकी सिलेबस, जो बाकी स्टेट्स के सिलेबस हैं उनसे हम एट पार है नहीं है, तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को हमें लेके आना पड़ता है, अक्वायर करना पड़ता है, फिर हमें इनको इनका यूज़ भी करते हैं. फिर इसके बाद हम आएंगे जो ऑप्शनल मॉड्यूल है हमारा 5A, वो है हमारा ऑप्शनल मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज. ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग बात करते हैं कि ग्रंथालय के प्रबंध के बारे में, कैसे मैनेज करते हैं हम लाइब्रेरीज को, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एक जब तक मैनेज नहीं होगी, जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगा, तो आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती है. तो इस लेसन में हम ये अच्छे से कवर करते हैं, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए. आप अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप यूज़ कर किस तरह से आप अपनी लाइब्रेरी को मैनेज करेंगे. तो इसमें पहला जो हमारा यूनिट है वो है लाइब्रेरी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट थ्योरी. तो इसमें हम सारे मैनेजमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि भाई जो पोस्ट कॉब है कैसे हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ें, किस तरह से लाइब्रेरी में हमें माइंड में स्टेप्स रख के काम करना पड़ता है. फिर है हमारा दूसरा है लाइब्रेरी स्टाफ. हम स्टाफ को कैसे रिक्रूट करते हैं, किस लाइब्रेरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायर किया जाता है. फिर है लाइब्रेरी यूजर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हैं वो है लाइब्रेरी यूजर्स. हम उनके बारे में भी आपको बताते हैं ताकि ये पता चले कि लाइब्रेरी यूजर्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारे यूजर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएं, उनका काम आसान हो जाए. हमारा मेन एम ये है. फिर हम 5B पे जाएंगे जो 6th मॉड्यूल है, जिसमें से इन दोनों में से आपको एक चुनना होता है. इसमें हम आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बताते हैं कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे पहुँचते हैं हम इन्फॉर्मेशन तक, हम इसकी सर्चिंग कैसे करते हैं. इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती, मगर इसमें से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकालना, ढूंढना और उसमें से पर्टिकुलर चीज़ें लेना, वो एक आर्ट है, वो एक कला है जो आपको सीखनी पड़ती है. इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कौन से टूल्स यूज करोगे, सर्चिंग कैसे करोगे, रिट्रीव कैसे करोगे, इन्फॉर्मेशन को लोगे कैसे, आप जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होती. इसमें हमने कौन से यूनिट्स को कैसे फर्दर इसको सेगमेंट किया है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, जिसमें हम आपको इसका कॉन्सेप्ट और स्कोप के बारे में बताते हैं. भाई इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में हमारा ज़रूरत क्या है, हमें स्कोप क्या है, क्यों करना चाहिए हमें, तो ये हम आपको वहाँ बताएंगे, समझाएंगे. फिर यूनिट 2 में हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स हम आपको बताएंगे. कैटलॉग एक टूल है, इंडेक्सिंग एक टूल है, सब्जेक्ट हेडिंग एक टूल है. तो क्यों करते हैं ये सब चीज़ें हम, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टमेटिकली रिट्रीव हो जाए. फिर तीसरा चैप्टर है इसमें सर्च टेक्निक्स. हम आपको टेक्निक्स बताएंगे, बेसिक टेक्निक क्या है हमारे पास. अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आप उसमें देखोगे लाखों सर्चेस आ जाते हैं, मगर लाखों सर्चेस को आप तो रीड नहीं कर सकते, उसमें से आप रिप्लाई नहीं ढूंढ सकते. फिर हम आपको पर्टिकुलर दिखाते हैं कैसे हम एडवांस सर्च कर सकते हैं. तो इसमें हम आपको बूलियन कैरेक्टर्स भी दिखाएंगे कि एंड और डालने से कितना फ़र्क पड़ता है जब आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं, और आपको ऑथेंटिक तरीके आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने के, ऑथेंटिक रिप्लाइज अपने क्वेश्चंस के, वो आपको यहाँ पर समझाएंगे. फिर हम आपको वेब बेस्ड सर्च कैसे की जाती है, किस तरह की स्ट्रिंग्स डालनी चाहिए आपको ताकि आपका जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज आ जाए, एकदम सही तरीके से आपको वो रिजल्ट आ जाए जो आप करना चाहते हो. तो ये हमारा था टोटल सिलेबस, जो हमने 14 हमने बेसिक बनाए, फिर हमने 8 जो है प्लस ऑप्शनल के बनाए. तो इसी तरह से फिर हमने क्वेश्चन पेपर पे आएंगे. क्वेश्चन पेपर में हमने क्या किया है, टोटल आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है. उसमें हम जो लार्ज आंसर्स हैं, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, वो आपके पास 3 आएंगे, पर उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे. जो शॉर्ट नंबर वाले हैं, ऐसे जिसे कहते हैं 3 नंबर वाले, वो हमारे आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे. 12 नंबर के 4 वाला भी क्वेश्चन है और 3 नंबर के भी 12 नंबर के ही हैं. फिर आपको वेरी शॉर्ट है, वो है 2 नंबर के, वो है 8 क्वेश्चंस, जो कि 16 नंबर के. टोटल मिला के आपको जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको 40 नंबर के हो जाते हैं। इसके बाद हम पेपर को हमने क्या चेंज किया, पहले हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में पहले 10 क्वेश्चन देते थे आपको एमसीक्यू, इस बार हमने एमसीक्यू को बढ़ाया हुआ है, चेंज किया हुआ है, एमसीक्यू को हमने बदला है। तो अब क्या किया है, हमने एमसीक्यू दो तरह के बनाए हैं। एक हमने बनाए वन मार्कर, वन मार्कर में आपको मिलेंगे 16 क्वेश्चंस जो 16 नंबर के हो गए। फिर जो टू मार्कर है, टू मार्कर में आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 12 क्वेश्चन मिलेंगे तो 24 नंबर है उसके, तो ये भी होते हैं टोटल मिला के 40। तो ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन पेपर बन गया वो बन गया आपको 80 नंबर का। ये है हमारा जो डिवीजन है। मगर इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो मैं ये बताऊंगी आपको, हमने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, हमने इस सिलेबस को इस तरह से डिवाइड किया ताकि जो पढ़ने वाला शिक्षार्थी है उसके ऊपर प्रेशर कम बने, ताकि वो अपनी स्टडी को एक सही तरीके से कर पाए और समझ ले। हमने लेसन्स को क्या किया, हमने डिवाइड किया। जैसे अब हम मॉड्यूल वन पे जाएंगे, अभी जो मैंने मॉड्यूल वन बताया जिसके चार चैप्टर्स हैं, चार में से हमने टीएमए के लिए दो चैप्टर ले लिए हैं। हमारा टीएमए का है 40%, 60% है आपका जो आपका पब्लिक एग्जाम होगा। टीएमए आप सब लोगों को पता है आपका ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट है, जो आप लोग लिखते हैं अपने आप घर बैठ के, फिर आप भेज देते हैं, और अब एक ऑप्शन ये भी है आपको, आप अपलोड कर लेते हैं। तो इसलिए हम वो चैप्टर्स इसमें डालते हैं ताकि वो चैप्टर जिनमें आप बैठ के सर्च कर सकते हैं, जो आप घर पे बैठ के ढूंढ के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जिससे आपको वो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए जो आपको कभी भी काम आ सकती है। इसलिए हमने लेसन में क्या किया, लेसन में सेकेंड लेसन जो है ग्रंथालय और सूचना केंद्रों के प्रकार जिसमें टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं, इसको हमने टीएमए में लिया। तो ये आपको आखिर एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर ओवरऑल आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप इसे जानें कितनी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखें, इसे पढ़ें। आधुनिक ग्रंथालय भी जो है, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी जिसमें है, जिसमें वर्चुअल और डिजिटल लाइब्रेरी, इसको हमने मॉड्यूल वन के ये दो लेसन हमने टीएमए में डाल दिए हैं। और इसके दो लेसन जो बचते हैं, पहला लेसन ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र जो फर्स्ट वाला है, और ग्रंथालय विज्ञान के पांच सूत्र जो हमारा, मैंने कहा आपको, बेस है हमारे लाइब्रेरी साइंस का। ये दोनों थ्योरेटिकल लेसन है, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये बेसिस है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के। इन दोनों को पढ़ के आप फाइनल एग्जाम मॉड्यूल वन में से जो आएगा, आपको दो लेसन इसमें से मॉड्यूल वन में एग्जाम के लिए चले गए और दो लेसन चले गए टीएमए के लिए। लेसन टू और थ्री चला गया टीएमए में और लेसन वन और फोर चला गया फाइनल एग्जाम में। अब हम मॉड्यूल टू पे आएंगे, वहां पर हमने लेसन सेवन और एट को लिया है टीएमए में, संदर्भ स्रोत और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, इसको हमने टीएमए में लिया क्योंकि इसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो सूचना स्रोतों का जो इसकी ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, पांचवा, इसको हमने आपको फाइनल एग्जाम में डाला है। और सिक्स को भी, जो सूचना स्रोतों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, को भी हमने फाइनल एग्जाम में डाला हुआ है। तो अभी तक आपने मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू में देख लिया, दो दो लेसन हमने टीएमए में दिए हैं, दो दो लेसन आपके फाइनल एग्जाम में आ गए। अब हम आएंगे मॉड्यूल थ्री पे, वहां हमने लेसन टेन को ग्रंथालय सामग्री का प्रकरण और वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है, इसको हमने टीएमए में ले लिया है। और जो लेसन नाइन है ग्रंथालय सामग्री का व्यवस्थापन और अवधारणा, इसको, और 11 को ग्रंथालय सामग्री का व्यवस्थापन और रखरखाव मेंटेनेंस, इसको हमने ले लिया है फाइनल एग्जाम में। जहां जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है जिसमें आपको समझ के पढ़ के लिख के आंसर्स बनाने हैं, वो आपको थ्योरी में मिल रहे हैं, फाइनल एग्जाम में जा रहे हैं। और जहां पर आपको, हमें लगता है कि आप घर बैठ के इसको रिसर्च कर सकते हैं, आप इसकी सर्चिंग करके इसकी रिप्लाई बना सकते हैं, तो वो आपको टीएमए में मिला। अब मॉड्यूल फोर में हमने एक लेसन टीएमए में डाला, मॉड्यूल थ्री में एक लेसन टीएमए में डाला, वो है लेसन 14 आधुनिक ग्रंथालय सेवाएं, जो है हमारा टीएमए का लेसन। और 12 और 13 को हमने पाठकों के लिए ग्रंथालय एवं सूचना की सेवाएं, ये और पारंपरिक ग्रंथालय सेवाएं, इसको हमने लिया है फाइनल एग्जाम के लिए। ये अभी तक हुआ हमारा कोर मॉड्यूल में से, हमने लेसन्स को कैसे डिवाइड किया, क्योंकि 40-60 लेना है हमने, 60 आपको फाइनल एग्जाम के लिए दे रहे हैं, और टीएमए आप अच्छे से करेंगे तो आपको टीएमए के 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं कट सकते। और अब आप मॉड्यूल 5 पे आएंगे, मॉड्यूल 5 में सारे चैप्टर्स, क्योंकि इसमें से आपको या मॉड्यूल 5 करेंगे या आप मॉड्यूल 6 करेंगे, तो इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको एक बार में फाइनल एग्जाम में ही आएंगे, उसमें से कोई टीएमए में कुछ नहीं आएगा, और मॉड्यूल 6 का भी यही है, आपने जो भी चूज किया होगा वो एक आपके चार चार लेसन उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो लेसन्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं, हमारे डिवीजन इस तरह से हुई है 40-60। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने जो पहले ही हमने लेसन सिलेबस को कम कर दिया है, क्योंकि हमने टीएमए में भी 40% ले लिया और 60% हमने आपका फाइनल एग्जाम में ले लिया। उसके बाद हमने एक और चॉइस आपके लिए की, जो हमने चाहा कि आपको और भी सहूलियत हो जाए, वो हमने क्या किया, टोटल 43 क्वेश्चंस बनाए लाइब्रेरी साइंस के। 3 घंटे का पेपर है आपको, 80 नंबर का पेपर है, और 43 क्वेश्चंस बनाए हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 43 है, मगर ओवरऑल देखेंगे आप क्वेश्चंस और ज्यादा हैं। आपको क्या करना है, पहले जो 1 से 16 है, एक नंबर वाले हैं, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने अच्छे से ऑप्शन दिया हुआ है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है, हमने जैसे कि पहले ऑप्शन थे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कंप्राइज ऑफ, 4 हमने ऑप्शन दिए, आप किसी एक को टिक कर सकते हैं या आप दूसरे वाला क्वेश्चन ले लेंगे। हमने इस तरह से सोच के बनाया है कि अगर कोई बच्चा सपोज कोई लेसन नहीं भी पढ़ता है तो एक लेसन दूसरा पढ़ता है, तो उसको उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएं ताकि उसका नुकसान ना हो। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया, एग्जांपल्स ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन हमने दे दिए हैं आपको, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप पूरे लेसन को सही से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस चीज पे आपको टिक करना है। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री वही है जिसमें हम जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वाले नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं। तो आप किस पे टिक करेंगे, एक चीज पे टिक करेंगे। यहां पर अगर आपको 1 नहीं करना है, इसका हमने पार्ट बी भी बना दिया, और जहां पर लिखा, जहां जहां पे आपको और नजर आ रहा है तो वहां पर आपके पास चॉइस है क्वेश्चंस में, तो तीसरे क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है। फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, एडवांसेस इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ डैश सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस तरह के सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं जब दिन ब दिन कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है, बढ़ती जा रही है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, तो इस तरह से यहां पर हमने आपको और भी दिया हुआ है। अगर आपने सपोज बाय चांस किसी ने ये लेसन नहीं किया है, इसका ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास और में भी चॉइस है, तो हर हाल में आपको 1 मार्क यहां से आप रिसीव कर सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं 1 मार्क को। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 में आया है, फिल इन द ब्लैंक है, वहां पर हमने आपको 2 टास्क टू बी कैरी आउट बाय द मेंटेनेंस स्टाफ ऑन द डेली बेसिस, जो 2 काम मेंटेनेंस स्टाफ करता है डेली डेली वो क्या है, जहां पर हमने आपको चॉइसेस दिए हैं, शेल्फ रीडिंग एंड ब्लॉकिंग है क्या, शेल्फ अरेंजमेंट एंड स्टैकिंग है क्या, शेल्विंग एंड ब्लॉकिंग है क्या, स्टैकिंग एंड ब्लॉकिंग है क्या। इसमें क्या होता है, आंसर कुछ कुछ सेम सेम होते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर आंसर नहीं पता होगा तो आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं कहूंगी जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, बहुत कम गैप होता है इनके आंसर्स में, आपको लगेगा सारे ही सही हैं पर सही नहीं होते, इसमें से एक ही सही होगा। इस तरह से यहां पर कोई चॉइस नहीं है आपको। 6ठे क्वेश्चन में भी आपको कोई चॉइस नहीं है, 7वें में भी हमने फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, इसी तरह से हमने जो 11 क्वेश्चंस आएंगे आपको कोर मॉड्यूल में, पहले 5-4 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, फिर 5 से लेके 11 तक कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको आंसर देना है। आप देखोगे पुराने पेपर पे भी आप ऐसे ही करते थे, वहां पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलते थे जो पहले बच्चों ने दिया होगा। आप जो इस बार बाइफर्केशन वाला सिलेबस देंगे वो इस तरह के मॉड्यूल को ध्यान में रखेंगे। फिर जब हम ऑप्शनल मॉड्यूल पे आते हैं, जब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शनल में हमें मॉड्यूल को चुनना है, क्वेश्चन को नहीं, हमने मॉड्यूल में से 5 क्वेश्चन लिए हैं तो हमें या तो पहले ए वाले मॉड्यूल में से हम अपने 5 क्वेश्चन कर लेंगे या हम बी में से कर लेंगे, तो इसमें से और मॉड्यूल्स के बीच में है, क्वेश्चंस के बीच में कोई कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी तरह के जो क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हो गए वन मार्कर, ये है एमसीक्यू में। अब हम इसी में हमने टू मार्कर्स भी एमसीक्यू दिए जो 24 नंबर के हैं आपके पास। यहां पर गेन करना बहुत आसान भी है आपको। हमने चार चॉइसेस दी, अटेम्प्ट एनी टू, तो यहीं पर आपको चॉइस मिल गया। हमें खाली आपको सिर्फ दो ही के आंसर बताने हैं। हमने आपको चार क्वेश्चन बना के दिए हैं, नेम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, या ये करो व्हाट इज द पर्पज सर्व्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, या ये करो, या हाउ डू यू कैटेगराइज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बाय फिजिकल फॉर्म, या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ। अब इस चार में से आपको दो का चॉइस मिल रहा है यहाँ पर, तो आप दो करने से आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए यहाँ पर मार्क्स को गेन करना। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 पे भी फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिए हैं। चार क्वेश्चंस का बनाया हमने, उसमें से आप टू कर सकते हो। तो ये सेकेंड नंबर में जो दो दो मार्क्स के हैं क्वेश्चंस, इसमें हमने आपको विद इन क्वेश्चन चॉइस दिया। इसमें हमने कोई और नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है। कहीं कहीं पे, कई जगहों पे हमने आपको क्या किया है, आपको क्वेश्चन के बीच में ही चॉइस दे दिया है। जैसे हमने डिफरेंशिएट बिटवीन, हमने लिखा बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट, बुक एंड पैम्पलेट, स्कॉलरली पीरियोडिकल्स एंड पॉपुलर पीरियोडिकल्स। इसमें हम आपको कह रहे हैं आप सिर्फ दो कर लीजिए, चारों करने की नहीं है जरूरत। आपको दो करेंगे तो आपको दो मार्क्स मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या किया, चार बनाए, आपको आपसे बोल रहे हैं हम सिर्फ दो करिए। तो ये क्वेश्चन पेपर ईजियर हो गया आपका, पहले से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है, मगर जब आप करने बैठेंगे तो आपको लगेगा चॉइस काफी मिल रही है हमें। तो इस तरह से हम आपको ये 24 मार्क्स में भी अच्छी खासी विद इन क्वेश्चन चॉइस मिल रही है आपको, बढ़िया चॉइस मिल रही है आपको। फिर हम जब ऑप्शनल मॉड्यूल पे आते हैं, तो ऑप्शनल मॉड्यूल में विद इन क्वेश्चन चॉइस है आपको, क्योंकि हमने चार दे दिए, आपको दो करना है। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाफिंग, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई इज इंडक्शन नेसेसरी, डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये चार क्वेश्चन है बेसिकली, आपको दो ही करने हैं, तो आपको आपके लिए यहाँ पर भी चॉइस होगा। इसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक बनाया। ऑप्शनल मॉड्यूल में भी आपको अगर ए करते हैं ए में से, या बी करते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपने चूज किया है आपने उसमें से, तो आपको यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस मिलती है। ए करिए तो उसमें से अपना इंटरनल चॉइस में से चार में से दो 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 कर लीजिए। तो इस तरह से फिर हम पार्ट थर्ड पे आ जाते हैं। पार्ट थर्ड में ये तो मल्टी चॉइस में दो दो मार्क के क्वेश्चन थे जिसमें विद इन चॉइस मिल रही थी। अब हम क्या आएंगे, पार्ट थर्ड है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें हम आपको दो नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, मगर क्वेश्चन के बीच में और है क्वेश्चन। अगर हमने पांच बनाए हैं, पांच की जगह हमने सात या आठ बनाए हैं, ताकि आप इसमें से पांच करेंगे, मगर ये नहीं कि ओवरऑल रैंडमली आप नहीं कर सकते हो। हमने क्या किया है, हमने दो क्वेश्चंस के बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है कि अगर आपने ये वाला चैप्टर बना पढ़ा है फर्स्ट, अगर नहीं कोई नहीं फोर्थ पढ़ा है, तो फोर्थ में से आप रिप्लाई कर सकते हो। दोनों तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया, आपको दो मार्क्स गेन करने में बहुत ही सहूलियत है। और जब आप देखते हैं कि इसी तरह डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज एक मॉड्यूल में से आ रहा है, और जो दूसरा क्वेश्चन नेम फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड सर्विसेज वो दूसरे में से, तो यहाँ भी आपको चॉइस मिलती है। तो ये जो दो 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 मार्क्स नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके इंटरनल चॉइस हैं। फिर जब हम ऑप्शनल मॉड्यूल पे आ जाते हैं, वहां पर हमने कोई चॉइस नहीं रखी इनमें, बस मॉड्यूल ए या मॉड्यूल बी पूरा पूरा करिए। दो दो क्वेश्चन हैं चार नंबर के, दो दो नंबर के दो क्वेश्चंस, तो इस तरह से आप करेंगे। फिर हम जब आ जाते हैं तीन नंबर वाले पे, तीन नंबर में भी हमने आपको बहुत अच्छी चॉइस दी है। पहले में हमने आपको और बता दिया, वही वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका लेसन कभी कुछ छूटा भी है, तो आप किसी दूसरे लेसन में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में चॉइस दिया है, दो क्वेश्चन बिना चॉइस के दिए हैं। फिर ऑप्शनल मॉड्यूल आपको पक्का पता है कि आपको तीन मार्क्स में से एक क्वेश्चन या वो वाला कर लीजिए, या मॉड्यूल बी में से ले लीजिए। जो फिफ्थ पार्ट है लॉन्ग आंसर वाला, उसमें अच्छी चॉइस मिली, आपको चार मार्क्स गेन करने हैं। आपको चार मार्क्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी और मिला है, सेकंड में भी और मिला है। तो इस तरह से आपने अगर कोई सा भी लेसन पढ़ा है या एक लेसन छूट भी गया, तो मार्क्स गेन करने का आपको पूरा पूरा मौका मिलता है। और लाइब्रेरी साइंस का पेपर इतना अच्छे से आप कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 80 में से तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे 60 ना मिले, 65 ना मिले, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बन गया है आपका, चॉइसेस बहुत सारी हैं। बस पेपर को पहले थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, और आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगर आप ये सोचेंगे कि पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी लैंग्वेजेस में भी है, आप अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आपको डेफिनेटली, आप देखेंगे किसी ने फिल इन द ब्लैंक का जवाब आपको दूसरे क्वेश्चन में से मिलेगा। आप बस थोड़ा ध्यान लगाए, जो आपको पहले 15 मिनट मिलेंगे समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो आप ठीक से ध्यान से पढ़िए, आंसर्स को बिल्कुल क्लैरिटी से लिखिए, क्लीन लिखिए, हैंड राइटिंग क्लीन रखिए अपनी, किचपिच मत करिए। और जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उस पर ध्यान लगाइए, उसको 4 नंबर का रिप्लाई बनाना, उसको 50 वर्ड्स तक बनाना है या 100, मगर जो 1-1 मार्कर है उस पर इतना लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जो मांगा गया है उतना ही रिप्लाई कीजिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बाइफर्केशन क्या है, कैसे किया है हमने सिलेबस को डिवाइड। आपके 6 लेसन टोटल हैं जो आपके TMA में जाएंगे, बाकी सारे लेसन्स आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। TMA के लेसन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको फाइनल एग्जाम में, TMA को अपना पूरा पढ़िए जब आप TMA बना रहे हैं। पर जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हमने बीच में से निकाले हैं, पर पढ़े सारे चैप्टर्स को, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी आपको अगला चैप्टर समझ आ जाएगा। पढ़ना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको आसानी होगी समझने के लिए कि लाइब्रेरी साइंस क्यों है, किस लिए पढ़ा रहे हैं और आगे इसके क्या फायदा होना है हमें। और मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, और आप अगर ये प्रोग्राम सुनेंगे तो इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।